दशम उल्लास अर्थालंकार। अर्थालंकारों का विभाजन कुछ विशेष आधारों पर किया जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया जाता है। एक सादृश्य मूलक, दो विरोध मूलक, तीन श्रृंखला बंध मूलक, चार तर्क न्याय मूलक, पांच लोक न्याय मूलक, छह वाक्य न्याय मूलक, सात गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। प्रत्येक वर्ग के मुख्य मुख्य अलंकारों की विशेषता दिखलाने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। एक सादृश्य मूलक अलंकार। ये अलंकार सादृश्य या समानता की कल्पना पर प्रतिष्ठित रहते हैं। किसी अज्ञात वस्तु को समझने या समझाने का सबसे सुंदर साधन सादृश्य है। सादृश्य के द्वारा हम किसी अज्ञात विषय का ज्ञान किसी व्यक्ति को करा सकते हैं। इस वर्ग के अलंकारों में मुख्य उपमा कविता के उदय के साथ साथ ही उपमा का भी उदय हो गया था। भारतीय वाङ्मय के निदान वेदों में या वेद मंत्रों में उपमा अपनी भव्यता, सुंदरता तथा रमणीयता से पाठकों के मन को मुग्ध करती है। कविता का तो प्राण ही उपमा है। अप्पय दीक्षित ने उपमा की तुलना एक नटी के साथ की है। रंगमंच के ऊपर नटी नाना वेशभूषा से सज्जित होकर नाना रूपों में आती है। कभी वह शकुंतला के रूप में अवतीर्ण होती है तो कभी किसी अन्य रूप में उपस्थित होती है। उसके बाहरी रूप अनेक हैं, परंतु आवरण को हटाकर देखा जाए तो एक ही रूप उसका सर्वत्र दिखाई देगा। ठीक यही दशा उपमा की भी है। वह काव्य के रंग मंच पर कभी रूपक, कभी दीपक, कभी दृष्टांत के रूप में आकर पाठकों का मनोरंजन करती है। उपमेयिका शैलुषी संप्राप्ता त्रि चित्र भूमिका भेदान रंजयति काव्य रंगे नृत्यन्ति तद्विदाम चेतः। सादृश्य की कल्पना का विवर्त अन्य अन्य अलंकारों का आभास है, जैसा कि चित्र मीमांसाकार अप्पय दीक्षित का कहना है। चंद्र इव मुखमिति सादृश्य वर्णम तावदुपमा सैवोक्ति भंगी भेदेनानेकालंकार भावं भजते। तथा हि चंद्र इव मुखम, मुखमिव चंद्रः इत्युपमेयोपमा मुखम मुखमिव इत्यन्वयः। मुखमिव चंद्र इति प्रतीपम मुखचंद्रेण तापः साम्यति इति परिणामः। किमिदं मुखमुताद्ये चंद्रः इति संदेहः। चंद्र इति चकोरादन मुख मनुधावन्ति चंद्रोदयं न मुखम इत्य नूनम चंद्र इत्युपेक्षा चंद्रो अयम इत्यतिशयोक्ति इत्यादि उक्ताना उक्ताने कालंकार विवर्तवती यमुपमा तदिदं चित्रम विश्वम ब्रह्म ज्ञानादिवोपमा ज्ञानात् ज्ञातं भवदित्यादौ निरूप्यते निखिल भेद सहिता सा। इस प्रकार सभी अलंकार विवर्तों की अधिष्ठान भूता यह उपमा है। जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से विश्व ज्ञात हो जाता है, ज्ञातव्य और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है, इसी प्रकार एक उपमा के ज्ञान से सारा अलंकार वर्ग ज्ञात हो जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार उपमा अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। साधर्म्यम् उपमा भेदे 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 सति साधर्म्यम् उपमा समानः एकतुल्यो वा धर्मो गुणक्रियादि रूपो ययोः। अर्थात उपमानोपमेययोः तौ सधर्माणौ तयोर्भावः साधर्म्यम्। उपमानोपमेययोः समान धर्मेण सह संबंध उपमा इति सूत्रार्थः। उदाहरणम् चंद्र इव मनोज्ञम मुखम। अर्थात उपमा अलंकार में एक उपमान, दो उपमेय, तीन साधारण धर्म, चार उपमा वाचक शब्द, इन चार पदार्थों का उपयोग होता है। दो सदृश पदार्थों में प्राय अधिक गुण वाला पदार्थ उपमान होता है और न्यून गुण वाला पदार्थ उपमेय होता है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ अधिक गुणवत्तया संभावित चंद्रमा उपमान है और न्यून गुणवत्तया संभावित मुख उपमेय है। सौंदर्य या मनोज्ञत्व उन दोनों में रहने वाला साधारण धर्म है और यथा इव इत्यादि शब्द उपमा के वाचक शब्द होने हैं। इस प्रकार उपमान और उपमेय के समान धर्म के संबंध का वर्णन ही उपमा अलंकार कहलाता है। परंतु उपमा अलंकार में उपमान तथा उपमेय में भेद होना आवश्यक है, अन्यथा राम रावणयोर युद्ध, राम रावणयोर इव इत्यादि अनन्वयालंकार में भी सादृश्य का वर्णन होने से लक्षण की अभिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए उपमा के लक्षण में भेद पद देना आवश्यक है। अनन्वय में उपमान और उपमेय भिन्न नहीं रहते हैं। अतः भेदे सति उपमानो उपमेयोह साधर्म्यम उपमा ऐसा लक्षण करने से अनन्वयालंकार में लक्षण की व्याप्ति नहीं होती है। यह उपमा पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के भेद से दो प्रकार की होती है। उपमान, उपमेय, साधारण और उपमावाचक इवादि पद इन चारों का ग्रहण होने पर पूर्णा उपमा होती है और इन चारों में से एक या दो या तीन का लोप होने पर लुप्त उपमा कहलाती है। पूर्णोपमा के छह भेद। पूर्णोपमा प्रथम श्रौति और आर्थी के भेद से दो प्रकार की होती है। यह दोनों श्रौति तथा आर्थी उपमा वाक्यगत, समासगत तथा तद्धितगत होने से छह प्रकार की होती है। श्रौति उपमा जहाँ उपमान के बाद उपमावाचक यथा इव वा इत्यादि शब्द आए वहाँ श्रौति उपमा होती है। यद्यपि ये उपमावाचक शब्द यथा इव वा उपमान के विशेषण बनकर आते हैं परंतु कोष्ठक शब्द शक्ति की महिमा से कोष्ठक बन सुनते ही श्रवण मात्र से साधारण धर्म के संबंध रूप सादृश्य का भी बोध करा देते हैं। श्रवण मात्र से संबंध का बोध करा देने से श्रौति उपमा कहते हैं। तत्र तस्यैव इस सूत्र से इवार्थ में विहित वति प्रत्यय में तद्धित गा श्रौति उपमा होती है। आर्थी उपमा जहाँ तुल्य सदृश संकाश आदि उपमा वाचक शब्द कभी उपमान के साथ, कभी उपमेय के साथ या कभी दोनों के साथ अन्वित होते हैं वहाँ आर्थी उपमा होती है। ये उपमा वाचक तुल्य सदृश निधि इत्यादि शब्द यद्यपि साक्षात सादृश्य के वाचक होते हैं न कि साधारण धर्म के रूप संबंध विशेष साम्य या साधर्म के पर अर्थ के पर्यालोचन के बाद उक्त संबंध की भी प्रतीति कराते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में आर्थिक उपमा होती है और तेन तुल्य क्रिया चेद्वती इस सूत्र से विहितवती प्रत्यय होने पर तद्धित गा आर्थिक उपमा होती है। यह उभयविध पूर्णोपमा वाक्यगत, तद्धितगत तथा समासगत होने से छह प्रकार की होती है। श्रौति वाक्यगा पूर्णोपमा का उदाहरण स्वप्नेपि समरेषु विजयश्री स्वाम न मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। यहाँ स्वाधीन पतिका उपमान है, विजयश्री उपमेय है, न मुंचति साधारण धर्म है, यथा यह उपमा प्रतिपादक शब्द है। असमस्त यह वाक्य यथा शब्द द्वारा उपमा का प्रतिपादन होने से यह वाक्य का श्रौति उपमा है। आर्थी वाक्य का पूर्णोपमा का उदाहरण चकित हरणी लोल लोचनाया क्रुधि तरुणा रुणतार हारिकांति सरसीज मिदमाननम च तस्याह सममिति चेतसि सम्मदम विधत्ते। यहाँ सरसीज उपमान है, आनन उपमेय है, अरुण सदृश कांति मत्व साधारण धर्म है, सम शब्द उपमा प्रतिपादक है। यहाँ सरसीज माननम च समम इस पर सर्वप्रथम सादृश्य वद भिन्न मिदम द्वयम यह बोध होता है, पश्चात अर्थ पर्यालोचन से या व्यंजना से परस्पर निरूपित साधारण धर्म संबंध की प्रतीति होती है। अतः यह वाक्य का आर्थी पूर्णोपमा है। श्रौति समास का पूर्णोपमा का उदाहरण अत्यायते नियम कार्य भीरुच्छतानाम दिव्य प्रभाधीरन पाये मय रूपावह शौरीर भुजैरिव चतुर्भिरदह सदायो लक्ष्मी विलास भवनैर भुवनम वभार। श्री कृष्ण जिस प्रकार चार भुजाओं से संसार को धारण करते हैं उसी प्रकार यह राजा भी कोष्ठक साम दान दंड भेद रूप कोष्ठक बंद चार उपायों से सदा संसार का पालन करता था। यहाँ भुज ही उपमान है और उपाय ही उपमेय है। आय तत्वादि साधारण धर्म तथा इव उपमा प्रतिपादक शब्द है। इवेन नित्य समासो विभक्त्य लोपश्च पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम च इस वार्तिक से भुजय है। इस उपमानवाचक पद के साथ इव इस उपमावाचक पद का नित्य समास होने से यह समासगा श्रौति पूर्णोपमा का उदाहरण है। आर्थी समासगा पूर्णोपमा का उदाहरण अवि तथ मनोरथ प्रथ प्रथनेशु प्रगुण गरिम गीत श्री सूरत रुस दृश्यः स भवान विलषणीय क्षिति स्वर न कस्य। अभ्यर्थ मनोरथ मार्गों के विस्तार में प्रकृष्ट गुण गरिमा के कारण जिसकी समृद्धि प्रसिद्ध है इसलिए कल्प वृक्ष के समान है। हे राजन आप किसकी अभिलाषा के विषय नहीं है, इसमें सुरतरु उपमान क्षिति स्वर उपमेय प्रगुण गरिम गीत श्रित्व साधारण धर्म है। सदृश उपमावाचक शब्द है। सूरत रु सदृश में उपमान तथा उपमावाचक पदों का समास होने से यह समास का आर्थिक पूर्णोपमा है। तद्धित का श्रौती तथा आर्थिक पूर्णोपमा का उदाहरण गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत दूरालोक समरे निदाधाम्बर रत्नवत। उस राजा के गांभीर्य की गरिमा सचमुच समुद्र के समान है। युद्ध भूमि में ग्रीष्म काल के सूर्य के समान वह बड़ी कठिनाई से देखा जा सकता है। यहाँ पूर्वार्ध में गंगा भुजंग अर्थात समुद्र उपमान है, तस्य उपमेय है। गांभीर्य गरिमा साधारण धर्म है। गंगा भुजंगस्य इव इति गंगा भुजंगवत। इस विग्रह में तत्र तस्य इव इस सूत्र द्वारा इवार्थ में वति प्रत्यय है, अतः यहाँ तद्धित का श्रौति पूर्णोपमा है। उत्तरार्ध में निदाधाम्बर रत्न उपमान है, सह उपमेय है। दूरालोकत्व साधारण धर्म है तथा निदाधाम्बर रत्नवत में निदाधाम्बर रत्नेन तुल्यम इति निदाधाम्बरम रत्नवत। इस विग्रह में तेन तुल्यम क्रियाछेदवत इस सूत्र द्वारा तुल्यार्थ में वति प्रत्यय होने से तद्धित का आर्थी पूर्णोपमा है। लुप्तोपमा पूर्णोपमा में उपमान उपमेय साधारण धर्म तथा उपमा वाचक शब्द ये चारों शब्दतः उपात्त होते हैं। इस प्रकार उपमा की सारी सामग्री शब्दतः उपस्थिति होने के कारण इसको पूर्णोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा में यह सारी सामग्री शब्दतः निपात नहीं होती है। उपमान आदि चारों में से किसी न किसी का लोप अवश्य रहता है, इसलिए इसे लुप्तोपमा कहा जाता है। काव्य प्रकाश में लुप्तोपमा के 19 भेद दिखलाए हैं जो इस प्रकार हैं। विभाजक हेतु नाम उदाहरण धर्म लुप्ता समास गता श्रौती वाचः सुधा इव साधारण धर्म के लोप होने पर वाक्य गता मुख बिंदु यथा तद्धित गता आर्थी मनोष्मवत च समास गता ओष्ठस्य बिंब तुल्यः पांच वाक्य गता पल्लवेन समःपाशिः वाचक लुप्ता एक समासगा कामिनी गंड पांडुना दो कर्मणः क्यचि सुतमिवा चरति सुतीयति आधारात् क्यचि अन्तःपुरे इवा चरति अन्तःपुरीयति क्यंगी कर्तरी नारी इव आचरति नारीयते कर्मणि णमूलि निदाध धर्माशु दर्श पश्यति कर्तरि णमूलि पार्थ संचारम संचरति। उपमान लुप्ता वाक्यगा तस्या मुखेन सदृशं रभ्यं नास्ते दो समास गता न वा नयन तुल्यं रम्यमास्ते साधारण धर्म वाचक के लोप में क्वप प्रत्ययगा विधवति मुखब्जमस्याः समासगता मुखाब्जमस्याः धर्म व उपमान के लोप में एक समासगता लोकेन वा नयन तुल्यमास्ते दो वाक्यगा तस्या मुखेन सदृशं नास्ते वाचक तथा उपमेय के लोप में कर्मणः क्यचि सहस्रायुधीयति उपमान वाचक शब्द व सामान्य धर्म तीनों के लोप समासगता राजते मृग लोचना। इस प्रकार लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। अन्वयालंकार एक ही वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय होने पर अन्वय नामक अलंकार होता है। उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैक वाक्यगे अन्वय उदाहरण राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव उपमेयोपमा विपर्यास उपमेयोपमा तयोः उन दोनों अर्थात उपमान और उपमेय का परिवर्तन हो जाना उपमान का उपमेय और उपमेय का उपमान रूप में वर्णन उपमेयोपमा नामक अलंकार होता है। उदाहरण कमलेव मतिर्मतिरिव कमला यहाँ प्रथम कमला उपमान मति उपमेय है, द्वितीय बार मति उपमान और कमला उपमेय है। उत्प्रेक्षा संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत प्रकृति वर्ण उपमेय की सम के साथ संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। उदाहरण लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वांजनम नभ असत पुरुष सेवे व दृष्टि विफलताम गता इस पद में तम अंधकार का व्यापन आदि उपमेय की लेपनादि उपमान रूप से संभावना की गई है। ससंदेह ससंदहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः उपमेय का उपमान के साथ समान कोटि संशय होने पर संदेह नामक अलंकार होता है। यह एकत्र भेद कथन तथा अपरत्र भेद के अकथन से दो प्रकार का होता है। उदाहरण उपमान व उपमेय दोनों का भेद कथन अयम मार्तंडः किम् स खलु तुर्गय सप्तभिरितः। यह कोष्ठक राजा कोष्ठक वन सूर्य है क्या कोष्ठक यह संशय हुआ कोष्ठक वन परंतु सूर्य तो सात घोड़ों से युक्त होता है कोष्ठक यह भेद कथन है कोष्ठक वन भेद की अनुक्ति अकथन अस्याह सर्ग विधौ प्रजापतिर भूचंद्रो न कांति प्रदः। इसके निर्माण में क्या कांति को देने वाला चंद्रमा ही प्रजापति बना था अर्थात क्या स्वयं चंद्रमा ने अपनी कांति से इसका निर्माण किया है। इस पद में उर्वशी के निर्माण में प्रकृति प्रजापति रूप उपमेय में चंद्रमदन वसंत आदि नाना कोटिक अप्रकृति उपमानों का संदेह है अतः यह संदेहालंकार है रूप का अलंकार तद रूपकम भेदो या उपमानोपमेयोह उपमान और उपमेय कोष्ठक जिसका भेद प्रसिद्ध है उनका सादृश्यता सादृश्यतिशय कोष्ठक बंद का जो अभेद वर्णन है वह रूपक नामक अलंकार है। उदाहरण विद्वन मानस हंस हे राजन आप विद्वानों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। यहाँ मन में मानसरोवर का तथा राजा में हंस का आरोप किया गया है रूपक के भेद इस प्रकार हैं। रूपक एक सांग दो निरंग तीन परंपरित सांग में समस्त विभक्ति एक विभक्ति निरंग शुद्ध माला रूप परंपरित में श्लिष्ट अश्लिष्ट श्लिष्ट में शुद्ध माला रूप अश्लिष्ट में शुद्ध माला रूप अपहनुति प्रकृतम यन्य सिद्ध्यान्यत साध्यते सा स्वप्नहुति ही प्रकृति का निषेध करके जो अन्य की सिद्धि की जाती है वह अपहनुति नामक अलंकार कहलाता है अर्थात उपमेय को असत्य करके उपमान को ही सत्य रूप से स्थापित किया जाए तो अपहनुति अलंकार होता है। उदाहरण अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणत रुचः शैल तनये कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि अमुषेयं मन्ये विगलद मृतस्यन्द शिशिरे रतिः शांता शेते रजनी रमणी गाढ़ मुरसी। हे पार्वती कोष्ठक शैलतनये कोष्ठक परिपूर्ण चंद्रमा के शरीर में प्रगल्भता को प्राप्त यह कलंक नहीं दिखाई देता है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है किसी अमृत के प्रवाह से शीतल वक्षस्थल पर रति से शांत हुई रात्रि रमणी कोष्ठक सुख निद्रा में कोष्ठक बन सो रही है। यहाँ उपमेय कलंक का निषेध करके उपमान भूत रात्रि रमणी की स्थापना की गई है। कलंको नैवायम कहकर शब्दतः उपमेय का निषेध किया गया है इसलिए यह शाब्दी अपहनुति है। कहीं कहीं यह निषेध शब्दतः न होकर अर्थात भी आक्षिप्त होता है अर्थ श्लेष श्लेष सवाक्य एकस्मिन यत्र अनेकार्थता भवेत एक वाक्य में एकार्थ प्रतिपादक शब्दों के जहां अनेक अर्थ होते हैं वह शब्द परिवृत्ति सह होने के कारण अर्थ श्लेष नामक अलंकार होता है। उदाहरण वत वत लसत तेज पुंजो विभाति विभा करह इस पद में विभाकर नामक राजा की सूर्य के साथ तुलना करते हुए स्तुति की गई है। विभाकर यह शब्द विभाकर नामक राजा तथा सूर्य दोनों का वाचक है इसके स्थान पर कोई पर्यायवाचक शब्द के रख देने से उक्त अर्थ श्लेष नहीं बनेगा अतः इस अंश में शब्द श्लेष है शेष अंश में शब्दों के परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ श्लेष में कोई हानि नहीं है। यहाँ अभिधा का नियंत्रण नहीं होने से विभाकर शब्द से सूर्य तथा राजा दोनों अर्थवाच्य ही है। समासोक्ति परोक्ति भेद कहे श्लेष्ट है समासोक्ति ही श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृति का कथन समासोक्ति नामक अलंकार है अर्थात प्रकृति अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा श्लेष युक्त विशेषणों के प्रभाव से न कि विशेष पद के सामर्थ्य से जो अप्रकृति अर्थ का कथन है वह समास से संक्षेप से प्रकृति तथा अप्रकृति दोनों का कथन होने से समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण लब्ध्वा बाहु स्पर्श यस्याः स कोप्युल्लासः जय लक्ष्मी स्तव विरहे न खलु ज्वला दुर्बला ननु सा तुम्हारे बाहु स्पर्श को पाकर जिसको अनिर्वचनीय प्रसन्नता होती थी वह जयलक्ष्मी तुम्हारे वियोग में प्रसन्न नहीं है निश्चय ही दुर्बल हो गई है। यहाँ केवल जयलक्ष्मी शब्द अप्रकृत कांता रूप अर्थ का वाचक नहीं है अपितु श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा जयलक्ष्मी शब्द नायिका का बोधक भी होता है। रूपक अलंकार में प्रकृति पर अप्रकृति विशेष्य का आरोप होता है और समासोक्ति में प्रकृति व्यवहार में अप्रकृति व्यवहार का आरोप होता है। यही रूपक और समासोक्ति में भेद है। निदर्शना अभमन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, जहाँ वस्तु का असंभव या अनुपपद्यमान संबंध उपमा में परिवर्तित होता है वह निदर्शना नामक अलंकार होता है। निदर्शन अर्थात दृष्टांत बनाने वाला उपमा परिकल्पक होने से निदर्शना यह सार्थक संज्ञा है। उदाहरण क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति तितिषु दुस्तरम मोहा दुदूपेनास्मि सागरम। कहा तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहा शूद्र विषयों में संचरणशील मेरी बुद्धि, इन दोनों में महान अंतर है। अर्थात इतने बड़े सूर्य वंश का वर्णन मेरी क्षुद्र मति के द्वारा असंभव है, तथापि मेरा यह सूर्य वंश के वर्णन का साहस अज्ञानवश छोटी सी नौका से दूसरे समुद्र को पार करने की तरह है। इस पद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के वाक्यों का उपमानोपमेय भाव परिवर्तित होता है, इसलिए यह वाक्यार्थ निदर्शना है। यहाँ निदर्शना का आकार इस प्रकार है, मेरी बुद्धि के द्वारा सूर्य वंश का वर्णन छोटी सी नौका से सागर पार करने के समान है। वाक्यार्थ इस उपमा में परिवर्तित होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा अप्रस्तुत प्रशंसा या सैव प्रस्तुताश्रया अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपो अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्राकरणिक अर्थ के कथन से जो प्राकरणिक अर्थ का आक्षेप है वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा है। कहीं कहीं वाच्यार्थ पर प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप से भी अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार होता है। उदाहरण कस्तम भो कथयामि दैव दृतकम मा विद्धि शाखोटकम वैराग्या दिववक्षि साधु विदितम कस्मादिदम कथ्यते वामे नात्रवटस्तमध्वगजन सर्वात्मना सेवते न छायापि परोपकार करणे मार्गस्थितस्यापि मे। अरे तू कौन है, बतलाता हूँ कि मुझको अभागा शाखोटक कोष्ठक्ष्मशान की अग्नि से जले हुए पत्ते आदि से रहित सिहोरा का वृक्ष कोष्ठक बंद समझो, कुछ वैराग्य से यह बात कह रहे हो। कोष्ठक ऐसा प्रतीत होता है, कोष्ठक बंद आपने ठीक समझा। प्रश्न ऐसा क्यों कह रहे हो। उत्तर यह बाईं ओर बड़ का पेड़ है, पथिक लोग उसका ही सब तरह से आश्रय लेते हैं और मैं मार्ग में खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरे पास परोपकार करने के लिए कोष्ठक फल आदि तो दूर रहे कोष्ठक बंद छाया भी नहीं है, इसलिए मैं अपने को अभागा कहकर अपना परिचय दे रहा हूँ। यहाँ इस अप्रस्तुत वाच्य से किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति हो रही है जो किसी न किसी प्रकार से दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक है, परंतु या तो वह धनादि से हीन हो गया है अथवा नीच जाति का है जिसकी सेवा लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह न सहायता कर पाता है और न लोग उसकी सहायता ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वह दुखी है। यहाँ शाखोटक वृक्ष के साथ वार्तालाप संभव नहीं है, इसलिए इस उस वाच्यार्थ के ऊपर प्रतीयमान नीच जाति अथवा धनहीन दाता आदि प्रतीयमान अर्थ का आरोप करके ही अर्थ की संगति होती है, इसलिए यह अध्यारोप मूलक अप्रस्तुत प्रशंसा है। अतिशयोक्ति निगिर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परिणयत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम् कार्यकारणयोर्यस्य पौर्वापर विपर्ययः विज्ञेयातिशयोक्तिः सा। प्रकृत कोष्ठक उपमेय कोष्ठक बंध का कोष्ठक परिणय कोष्ठक बंध उपमान के द्वारा निगरण करके जो कोष्ठक आहार अभेद निश्चय कल्पित कोष्ठक बंध अभेद कथन रूप अध्यवसान है वह प्रथम अतिशयोक्ति है। प्रस्तुत अर्थ का अन्य रूप से वर्णन द्वितीय अतिशयोक्ति है। यदि के समानार्थक शब्द द्वारा कल्पना करना तृतीय प्रकार की अतिशयोक्ति है और कार्यकारण का जो पौर्वापर्य विपर्यय है वह चतुर्थ प्रकार की अतिशयोक्ति है। उदाहरण कमलम नम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकल टिकायाम सा च सुकुमार सुभगे स्तुत्या। सुत्पात परंपरा केयम। किसी सुंदरी को देखकर किसी का कथन है, बिना जल के कमल, कोष्ठक नायिका का मुख, कोष्ठक बंद, कमल में दो नील कमल, कोष्ठक नेत्र, कोष्ठक बंद, और वे सोने की लता में लगे हुए हैं, और वह सोने की लता कोष्ठक नायिका का शरीर, कोष्ठक बंद सुकुमार तथा सुंदर है। यह कैसी अनर्थ परंपरा है। यहाँ उपमान रूप कमल आदि के द्वारा उपमेय भूत मुख नयन शरीर का निगरण करके कमल आदि से अभेद निश्चय किया गया है, इसलिए यह प्रथम अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति सामान्य का उदाहरण है। प्रतिवस्तुपमा, प्रतिवस्तुपमा तूषा सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यं द्वये स्थितः। जहाँ एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों में दो बार कोष्ठक भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाए, वह प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। उदाहरण, देवी भावंगमिता परिवार पदम कथम भजत पेशा न खलु परिभोग योग्यम दैवत रूपांकितम रत्नम। इस पद में उत्तरार्ध का वाक्यार्थ उपमान रूप है तथा पूर्वार्ध का वाक्यार्थ उपमेय रूप है, इसलिए वस्तु अर्थात वाक्यार्थ के उपमान उपमेय होने से उनके एक ही अनौचित्य रूप धर्म को पूर्वार्ध में कथम भजत पदों से तथा उत्तरार्ध में न खलु परिभोग योग्यम इन पदों से कहा गया है, अतः यह प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। दृष्टांत, दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्। इन उपमान उपमेय और उनके विशेषण व साधारण धर्म आदि का भिन्न होते हुए भी औपमम्य प्रतिपादनार्थ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में पृथक उपादान रूप बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्वलितम् आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। यहाँ नायक तथा चंद्रमा का, नायिका तथा कुमुदिनी का, और मन तथा कुसुम का, मनोभाव संतप्त तथा सूर्य संतप्त का, निर्वाण तथा विकास का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टान्तालंकार है। दीपकालंकार, सकृद वृत्ति स्तु धर्म से प्रकटा प्रकटात्मनाम सैव क्रियासु वहनीषु कारकस्येति दीपकम्। प्रकृत उपमेय प्राकरणिक तथा अप्रकृति उपमान अप्राकरणिक के क्रियादि रूप धर्मों का एक ही बार ग्रहण किया जाए या बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक का ग्रहण किया जाए तो दीपकालंकार होता है। उदाहरण, कृपणानाम धनम नागानाम फण मणि केसरा सिंहानाम कुवल कुल बालिकानाम स्तनाः कुतस्पृश्यन्ते मृतानाम। कृपणों के धन, सर्पों के फण की मणि, सिंहों के केसर और कुलीन बालिकाओं के स्तनों को उनके जीते जी कैसे छुआ जा सकता है। यहाँ स्पृश्यन्ते यह एक क्रियापद है, इसी के साथ धन, फण, मणि, केसर और स्तन आदि अनेक कारिकाओं का संबंध होने से यह क्रिया दीपक का उदाहरण है। तुल्य योगिता, नियतानाम सकृत धर्म सा पुनस्तुल्य योगिता। नियत प्रकृति या अप्रकृति का एक धर्म के साथ संबंध होने पर तुल्य योगिता नामक अलंकार होता है। उदाहरण, पांडुक श्यामम वदनम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः आवेदयति नितांतम क्षेत्रीय रोगम सखी हृदंतः। हे सखी, तेरा पीला पड़ जाना, सूखा चेहरा, स्नेह से भरा हुआ हृदय और अलसाया हुआ शरीर तेरे हृदय के असाध्य रोग को सूचित करता है। यहाँ विरह के अनुभव रूप में मुख की पांडुता तथा क्षामता, हृदय की सरसता तथा शरीर की अलसता आदि ये सभी वर्ण या प्रकृति अर्थ हैं। उनके साथ आवेदयति रूप एक क्रिया का संबंध है, इसलिए यह तुल्योगिता अलंकार है। व्यतिरेक, उपमानादन्यस्य व्यतिरेक स एव स। उपमान से अन्य उपमेय का जो आधिक्य वह कोष्ठक का वर्णन कोष्ठक बंद वह ही व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन स कलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंक। क्षीर सागर से समुत्पन्न कुमुद बंधु दिन में मलिन रहने वाला स कलंक बेचारा चांद क्या सीता जी के मुख की तुलना कर सकता है। यहाँ उपमान चंद्र से सीता जी के मुख का आधिक्य वर्णन होने से व्यतिरेकालंकार है। अर्थांतर न्यास, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यास साधर्म्येण तरेण वा सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न कोष्ठक अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतर न्यास अलंकार साधर्म तथा वैधर्म से होता है। उदाहरण निज दोषा वृत्त मनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखमपि पीतम। अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त हो रहा है उसको अत्यंत सुंदर वस्तु भी बुरी जान पड़ती है। पित्त से पीड़ित पांडु या कामला रोग से ग्रस्त पुरुष को चंद्रमा के समान शुभ्र शंख भी पीला दिखाई देता है। यहाँ अपने मन में दोष होने पर अच्छी बात भी बुरी मालूम होती है। इस सामान्य सिद्धांत का समर्थन पीलिया के रोगी को शंख भी पीला दिखलाई देता है इस विशेष उदाहरण के द्वारा किया गया है। यह साधर्म द्वारा विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण है। वैधर्म द्वारा विशेष का समर्थन अहो ही मे बद्ध पराधमायुषा यद प्रियम वाच्यमिदम मये दृशम त एव धन्याः सुहृदः पराभवम् जगत् दृष्ट वैवही ये क्षयम् गताः। अरे मेरी लंबी आयु ने यह बड़ा अपराध किया है जिससे मुझे इस प्रकार का कोष्ठक सुहृद विनाश का कोष्ठक बंद अप्रिय समाचार कहना पड़ रहा है। वे ही वास्तव में धन्य है जो संसार में सुहृदय के पराभव को देखे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ सामान्य से विशेष का वैधर्म से समर्थन किया गया है। विरोध मूलक अलंकार विरोध या विरोधाभास विरोध सो विरोधे पी विरुद्धत्वेन यद्वचः। वास्तव में विरोध न होने पर भी जो दो विरोधों का कथन करना है वह विरोध या विरोधाभास नामक अलंकार होता है। उदाहरण इयम विशालापि च भूरिशाला विराजते संस्कृत पाठशाला यहाँ विगतः शाला यस्याम सा इत्यादि विग्रह से जहाँ शाला ही नहीं जहाँ भूरी बहुत शालाएं भवन कैसे होंगे इस आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार विशाला बहुत बड़ी इस अर्थ से हो जाता है। अथवा वा मुख की मधुराई कहाँ कहूँ मीठी लगे अखियान लुनाई यहाँ आँखों की लुनाई नमकीन पना को मीठा बताया है। विरोध स्पष्ट है परंतु यहाँ लुनाई का दूसरा अर्थ लावण्य सुंदरता इससे इसका परिहार हो जाता है। विभावना क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यति व्यक्तिर विभावना क्रियते अनयेति क्रिया इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ हेतु या कारण है। हेतु का रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना नामक अलंकार है। उदाहरण कुसुमित लता विरहताप्यधत्तरुज मलिकुलैर दष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भीर लोलिता प्यघूर्णत सा खिली हुई लताओं से ताड़ित न होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। भ्रमर कुल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी और कमलिनियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी वह चक्कर खा रही है। यहाँ लताओं का ताड़नादि पीड़ादि में हेतु हो सकता है परंतु उन कारणों के निषेध करने पर भी कार्य का प्रकाशन किया गया है इसलिए यहाँ विभावना नामक अलंकार है। विशेषोक्ति विशेषोक्तिर खंडेषु कारणेषु फलावचः संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने नमो स्वचवार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे जो कपूर के समान भस्म हो जाने पर भी जन जन में शक्तिमान हो गया है उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है। यहाँ भस्म हो जाना शक्ति के क्षय में कारण है परंतु इस कारण के रहते हुए भी शक्ति क्षय रूप कार्य का अभाव होने से यह विशेष शक्ति अलंकार है। भिन्न देश तयात्यंतम कार्य कारण भूतयोः युगपद धर्मयोर यत्र ख्याति सा स्याद संगति जहाँ कार्य कारण वस्तु भूत दो धर्मों की किसी विशेषता के कारण भिन्न देश में एक साथ प्रतीति होती है उन दोनों की स्वभावजन्य परस्पर संगति के त्याग देने से असंगति अलंकार होता है। उदाहरण यस्यैव व्रणस्तस्यैव वेदना भणति तज्जनो अलिकम दंत क्षतम कपोले बद्धा वेदना स पत्नीनाम जिसके घाव होता है उसी को वेदना होती है। कोष्ठक यह बात जो लोग कहते हैं कोष्ठक बंद यह सब झूठ है क्योंकि पति के द्वारा दंत क्षत वधु के काल में और सपत्नियों के हृदय में वेदना होती है। यहाँ कारणभूत दंत क्षत तथा कार्यभूत वेदना भिन्नाधिकरण में होने से असंगति है, क्योंकि कार्य कारण का एकाधिकरण्य ही प्रसिद्ध है। इसी भिन्नाधिकरण रूप असंगति में ही चमत्कार भी है, अतः यह असंगति अलंकार है। विषमालंकार क्वचित यदति वै धर्म्यानश्लेषो घटना मियात कर्तु क्रिया फला वाप्तिर नैवानर्थस्य यद् भवेत् गुण क्रियाभ्याम कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च विरुद्धे यत स एष विषमो मतः। कहीं संबंधियों के अत्यंत वैधर्म के कारण उनका परस्पर संबंध न बनना प्रतीत हो वह एक प्रकार का विषमालंकार होता है। उदाहरण शीरीषादपि मृदगवंगी केयमायत लोचना अयम क्वच कुकुलाग्नि कर्कशो मदना नलह। शीरीष के फूल से भी यदि कोमल अंगों वाली कहाँ यह दीर्घ लोचना और कहाँ तो साग्नि के समान असह्य कामाग्नि यहाँ मदना नल वह नायिका दोनों के अत्यंत विलक्षण होने से उनका संबंध अनुपन्न सा प्रतीत होता है, इसलिए यह विषमालंकार है। श्रृंखला बंध मूलक अलंकार माला दीपक माध्यम चेद यथोत्तर गुणावहम। पूर्व पूर्व की वस्तु द्वारा यदि उत्तर उत्तर वस्तु का उपकार किया जाए तो वह माला दीपक अलंकार होता है। उदाहरण सग्रामांगण मागतेन भवता चापे समारोपिते देवा कर्ण एन एन सहसा यद्य समासादितम कोदंडेन शराह शरैर शिरस्तस सेनापि भूमंडलम तेन त्वं भवता च कीर्तिर्तुला कीर्त्या च लोकत्रयम्। हे राजन संग्राम भूमि में आए हुए आपके धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ाने पर जिस जिसने जो सहसा प्राप्त किया सो सुनो। आपके धनुष ने बाण को प्राप्त किया, बाणों ने शत्रुओं के सिर को प्राप्त किया और शत्रु के सिर ने भूमंडल पृथ्वी प्राप्त की, पृथ्वी ने आपको प्राप्त किया, आपने अतुल कीर्ति प्राप्त की और कीर्ति ने तीनों लोकों को प्राप्त किया। यहाँ पूर्व पूर्व वस्तु द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उपकार होता है और एक ही आसादन क्रिया का सर्वत्र संबंध होने से माला दीपक है। कारण माला यथोत्तरम चेत पूर्वस्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता तदा कारण माला स्यात्। जहाँ अगले अगले अर्थ के प्रति पहले पहले अर्थ हेतु हो वहाँ कारण माला नामक अलंकार होता है। जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुण प्रकर्षो विनयाद वाप्यते गुण प्रकर्षेण जनोनुरज्यते जनानुराग प्रभवाही संपदः। जितेन्द्रियत्व विनय का कारण है और विनय से गुणों का प्रकर्ष प्राप्त होता है। गुणों के प्रकर्ष से लोगों का अनुराग होता है और जनानुराग से संपत्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ उत्तर उत्तर के प्रति पूर्व पूर्व की हेतुता मानकर कारण माला अलंकार होता है। यद्यपि यहाँ अनेक कार्य का वर्णन होने से कार्यमाला भी हो सकती है, परंतु कारण के ऊपर ही कवि का विशेष संरभ होने के कारण इसे कारण माला अलंकार कहते हैं। एकावली स्थाप्यते पोह्यते वापि यथा पूर्वम परम्परम विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विविधा। जहाँ पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर वस्तु विशेषण रूप रखी जाए अथवा हटाई जाए वह दो प्रकार का एकावली नामक अलंकार होता है। उदाहरण पुराणी यस्या सवरांगनानी वरांगना रूप पुरस्कृतांग्यः रूपम समुन्मीलित रुद्विलासम अस्त्रम विलासा कुसुमायुधस्य। जिस कोष्ठक उज्जैनी नगरी कोष्ठक बंद में घर वरांगनाओं से युक्त है और वरांगनाएं रूप से युक्त हैं और रूप से हाव भाव प्रकट हो रहे हैं और वे विलास काम के अस्त्र का काम कर रहे हैं। यहाँ पूर्व पूर्व के प्रति विशेषण रूप में उत्तर उत्तर के स्थापित किए जाने से पहले प्रकार की एकावली का उदाहरण है। सार उत्तरोत्तर मुत्कर्षो भवेत सारह परावधि। जहाँ पराकाष्ठा पर्यंत उत्तरोत्तर उत्कर्ष का वर्णन किया जाए वह सार नामक अलंकार होता है। उदाहरण मखमल ते कोमल महा कदली गर्भ को पात ताहु ते कोमल अधिक राम तिहारे गात। यहाँ मखमल केला गर्भ का पात और राम के गात एक दूसरे ने कोमलता में बढ़कर बतलाए गए, इसलिए यहाँ सार नामक अलंकार है। तर्क न्याय मूलक अलंकार काव्यालिंग काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता। हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ रूप में कथन करना काव्यालिंग नामक अलंकार होता है। उदाहरण वपु प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारेण प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रदत्तवान् नमन् मुक्तः सम्प्रत्यहतमतनूर् ग्रेप्यनतिभाक् महेश क्षन्तव्यम् तददीमपराधद्वयमपि। हे शिवजी महाराज, इस शरीर के उत्पन्न होने से यह अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको प्रायः कभी नमस्कार नहीं किया। अब इस जन्म में नमस्कार करता हुआ मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए शरीर न रहने से आगे भी आपको नमस्कार नहीं कर सकूंगा। सो मेरे इन दोनों अपराधों को क्षमा करना। इस पद में पूरा जन्म नि भवंतम न प्रणतवान और अग्रेप्य नति भाग, इन वाक्यों का अर्थ अपराध द्वय का हेतु है। यद्यपि अनमन स्वयं अपराध है, इसलिए उसमें साधारण रूप हेतु हेतु मत भाव नहीं है, परंतु अनमन को हेतु और उससे उत्पन्न दुरित या अदृष्ट को हेतुमान कहा जा सकता है। अनुमान अनुमानं तदुक्तम यत साध्य साधनयोर वचः, जहाँ साध्य साधन का कथन हो वह अनुमानालंकार कहलाता है। अनुमान में पक्ष धर्मत्व, अन्वयित्व तथा व्यक्तिरेकित्व रूप से तीन धर्मों से युक्त त्रिरूप हेतु साधन कहलाता है और धर्मी अर्थात पक्ष में व्यापक वहनी आदि के अभाव का निषेध आयोग अवच्छेद अर्थात अभाव का अभाव अवश्य सत्ता ही उसका साध्यत्व है। कोष्ठक आयोग व्यवच्छेद का अर्थ यहाँ अन्यूनातिरिक्त विषयत्व भी है। कोष्ठक बंद उदाहरण यत्रैता लहरी चा लाचल दृशो व्यापार यंती भुवम यत्तत्रैव पतन्ति संतत ममी मर्म स्पृशो मार्गणाः तच्च कृत चाप मंचित शर प्रेंखत करह क्रोधनो धावत्यत्र एव शासन धरह सत्यम सदा साम स्मरह। जल तरंगों के समान अत्यंत चंचल नेत्रों वाली ये कोष्ठक प्रसिद्ध तरुणिया कोष्ठक बंद जहाँ जिस पर अपनी आँख चला देती है वही ये कोष्ठक कामदेव कोष्ठक बंद मर्मवेदी बाण जो निरंतर गिरने लगते हैं। इससे विदित होता है कि धनुष को चढ़ाए हुए और बाण के ऊपर ही हाथ रखे हुए उनका आज्ञाकारी क्रोध युक्त कामदेव सचमुच सदा इनके आगे आगे ही दौड़ता रहता है। यहाँ पूर्वार्ध में कहा हुआ अर्थ साधन रूप है और उत्तरार्ध में कहा हुआ अर्थ साध्य रूप है, इसलिए यहाँ अनुमान अलंकार है। यत और तत शब्दों से उन दोनों धर्मों की व्याप्ति सूचित की जाती है। कहीं कहीं पहले साध्य तथा बाद में साधन का भी कथन होता है, जैसे भर्तृहरि का निम्नांकित पद इसका उदाहरण है। मधु तिष्ठति वाचि योषिताम वृद्धि हाला हलमेद केवलम अतएव निपीयते धरो हृदय मुष्टि भीरैव ताद्यते। वाक्य न्याय मूलक अलंकार समुच्चय तत् सिद्धि हेता वेकास्मिन् यत्रान्यत्तत्करं भवेत् समुच्चयो असौ। उस कार्य की सिद्धि का एक हेतु विद्यमान रहने पर भी जहाँ अन्य हेतु भी उसका साधक हो जाए वह समुच्चय अलंकार कहलाता है। उदाहरण दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोत्युत्सुकम् गाढ़ं प्रेमं नवम् वयोति कठिनाः प्राणाः कुलम् निर्मलम् स्त्रीत्वं धैर्य विरोधि मन्मथ सुहृत कालः कृता तो क्षमो नो सख्य शतुराः कथन्नु विरह षोडभ्य इत्थम षठः। कामदेव के बाणों से बचना ही कठिन है, उस पर भी पति दूर परदेश गए हुए हैं, मन अत्यंत उत्सुक हो रहा है, प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ हो रहा है, नया यौवन है, प्राण बड़े कठोर हैं, कोष्ठक निकलते नहीं, कोष्ठक बंद कुल निर्मल है, स्त्रीत्व धैर्य का विरोधी है, काम का परम मित्र वसंत समय है, यमराज भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, सखियां भी चतुर नहीं है, ऐसी दशा में इस दुष्ट विरह को कैसे सहन किया जाए। यहाँ केवल कामबाण ही जब असह है तब फिर ऊपर से प्रिय विरहादि का युगपत समापतन का वर्णन समुच्चय अलंकार है। पर्याय एकम क्रमेणानेकस्मिन् पर्यायः, एक वस्तु क्रम से अनेक में हो या की जाए तो वह पर्याय अलंकार होता है। उदाहरण नन्वाश्रय स्थितिरियं तत्कालकूट केनोत्तरोत्तर विशिष्ट पदोपदिष्टः प्रागर वर्णस्य हृदय वृक्ष लक्ष्मणो अथ कंठे धुना वरु सिवाचि पुनः खलानाम। हे कालकूट, तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद वाले आश्रय में रहने की स्थिति किसने बतलाई है? पहले तुम समुद्र के भीतर रहते थे, फिर शिव जी के कंठ में आए और अब दुष्टों की वाणी में रहते हो। यहाँ कालकूट के अनेक स्थानों पर रहने का वर्णन किया गया है, इसलिए पर्याय अलंकार का उदाहरण है। परिसंख्या किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत् प्रकल्पते तादृगण्य व्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता। कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात को उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिवर्तित होता है, वह परिसंख्या कहलाता है। अन्य प्रमाण से ज्ञात वस्तु भी जब शब्द से प्रतिपादित होकर अन्य प्रयोजन न होने से अपने सदृश अन्य वस्तु के निषेध में परिणत हो जाता है, वह परिसंख्या अलंकार होता है। उदाहरण किमा सेव्यम पुंसाम सवि धमनवद्यम द्यु सरितः किमे कांते ध्येयम चरण युगलम कौस्तुभ भृतः किमाराध्यम पुण्यम किमभिलषणीयम च करुणा यदा सत्याम चेतो निरवधि विमुक्ति प्रभवति। मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिए? गंगा के उत्तम तट का एकांत में किसका ध्यान करना चाहिए? कौस्तुभधारी भगवान विष्णु के चरण युगल का किसकी आराधना करनी चाहिए? पुण्य की किसकी कामना करनी चाहिए? करुणा की, जिन गंगा तटादि की सेवा से चित्त सदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ गंगा तट विष्णु के चरण युगल आदि का सेव्यत तो पुराणादि में प्रसिद्ध ही है, अतः उनके सेव्यत का प्रतिपादन करने में इस पद का प्रयोजन नहीं है, अपितु इन उक्त पदार्थों का अनुवाद कर उनसे भिन्न मुक्ति के प्रतिकूल स्त्री नितंबादि हिंसादि अन्य सांसारिक विषयों की सेव्यता के निषेध में ही इस पद का तात्पर्य है, इसलिए यह परिसंख्या का उदाहरण है। यथासंख्य यथासंख्यम क्रमेण एव क्रमीकारणाम समन्वय। क्रम से कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से समन्वय होने पर यथासंख्य अलंकार होता है। उदाहरण एकस्थितावसि चेतसि चित्रमत्र देव विषाम च विदुषाम च मृगी दृशाम च तापम च सम्मद रसम च रतिम च पुष्टन शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च। हे देव, आप अकेले ही शत्रुओं विद्वानों तथा मृग नैनाओं के मन में शौर्य की गर्मी से संताप को उत्पन्न करते हुए विनय से आनंद रस को बढ़ाते हुए और सौंदर्य से मृग नैनाओं के मन में रति को उत्पन्न करते हुए तीन रूपों में रहते हैं, यह आश्चर्य की बात है। इस पद में द्वितीय चरण में कहे हुए क्रम से ताप सम्मद रस और रति के साथ तथा तृतीय चरण में कहे हुए सौर्योष्मणा विनयन और लीलया का उसी क्रम से अन्वय होता है, इसलिए यह यथासंख्य अलंकार का उदाहरण है। लोक न्यायमूलक अलंकार सामान्य प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्य विवक्षया एकात्म्यं बध्यते योगात् सामान्यमिति स्मृतम्। प्रस्तुत वर्णनीय वस्तु के अन्य अप्रस्तुत के साथ संबंध से दोनों के गुणों की समानता प्रतिपादन करने की इच्छा से जो उन दोनों के एकात्म अभेद का वर्णन है वह सामान्य नामक अलंकार कहलाता है, अर्थात सदृश गुणों के कारण प्रकृति का अप्रकृति के साथ जो तादात्म्य है वह सामान्य अलंकार है, जैसा कि विश्वनाथ का कथन है सामान्यम प्रकृतस्यान्य तादात्म्यम सदृशैर गुण है। उदाहरण मल्लिका चित धम्मिला चारु चंदन चर्चिता अविभाव्या सुखम यान्ति चंद्रिका स्वभिसारिका। मल्लिका पुष्पों से केशपाश को सजाकर सुंदर चंदन से चर्चित अभिसारिकाएं चांदनी में अलक्षित होती हुई सुख पूर्वक जाती हैं। यहाँ वर्णनीय न्यायिका के शुभ्र गुण और चांदनी के एकाकार प्रतीत होने से सामान्य अलंकार है। तद्गुण स्वमत्सृज्य गुणम योगाद्युज्वल गुण से यत वस्तु तद्गुणा गुणता मेति भण्यते सतु तद्गुण। जब न्यून गुण वाली प्रस्तुत वस्तु अति उत्कृष्ट गुण वाली अप्रस्तुत वस्तु के संबंध से अपने स्वरूप या गुण को छोड़कर उस अप्रस्तुत वस्तु के रूप को प्राप्त हो जाती है उसको तद्गुण अलंकार कहते हैं। उदाहरण विभिन्न वर्णा गरुणाग्रजेन सूर्यस्य रथ्या परितः स्फुरन्त्या रत्ने पुनर्यत्र रुचारुचम स्वाभानि नीरे वंश करी रनील है। सूर्य के अश्वों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गरुड़ के अग्रज अर्थात सूर्य के सारथी अरुण की रक्त वर्ण के आधिक्य से भिन्न रंग को प्राप्त किए हुए सूर्य के घोड़े जहाँ बांस के अंकुरों के समान हरित वर्ण मरकत मणियों की चारों ओर फैलती हुई कांति से फिर अपनी कांति को प्राप्त कराए गए। यहाँ सूर्य के घोड़ों की अपेक्षा अरुण के वर्ण का उत्कर्ष है, उसकी भी अपेक्षा मरकत मणियों के वर्ण की उत्कृष्टता है। अरुण के द्वारा घोड़ों का जो रंग बदल गया था वह फिर रैवतक पर्वत के समीप आने पर मरकत मणियों के संपर्क से फिर घोड़ों का रंग हरा हो गया। अत्युत्कृष्ट गुण का पुनः ग्रहण कर लेने से यह तद्गुणालंकार है। अतद्गुण तद्रूपानुहार छेदस्य तत्स्याद तद्गुणः, समीपस्थ वस्तु का योग होने पर भी इसके द्वारा उस प्रकार के गुण का अनुसरण न किए जाने पर अतद्गुण होता है, अर्थात समीपस्थ होने पर भी न्यून गुण वाला अप्रस्तुत उस प्रस्तुत गुण या वर्ण को ग्रहण नहीं करे तो अतद्गुण नाम का अलंकार होता है। उदाहरण, धवलोसि यद्यपि सुंदर तथापि त्वया मम रंजितम हृदयम् राग भरितेपि हृदय सुगभ निहितो न रक्तोसि। हे सुंदर, तुम यद्यपि धवल हो फिर भी तुमने मेरे हृदय को रंग दिया और मैंने तुमको राग युक्त हृदय में रखा, फिर भी हे सुभग तुम अनुरक्त नहीं हुई। यहाँ अत्यंत अनुरक्त हृदय से संयुक्त होने पर भी नायक अनुरक्त नहीं हुआ, इसलिए अतद्गुण अलंकार है। गुणार्थ प्रतीति मूलक अलंकार स्वभावोक्ति स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेह स्वक्रिया रूप वर्णनम, बालक आदि की अपनी क्रिया अथवा रूप अर्थात वर्ण एवं अवयव संस्थान का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार है। उदाहरण, ग्रीवा भंगा विराम मुहूर् नूपत्ति स्यंदने तत्त दृष्टि इत्यादि। अभिज्ञान शाकुंतल के इस पद्य में भय से भागते हुए मृग के स्वभाव का सूक्ष्म वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है। भाविक प्रत्यक्षा इव यद्भावा क्रियन्ते भूत भाविनः तद्भाविकम्, अतीत और अनागत पदार्थ जब प्रत्यक्ष से कराए जाते हैं भाविक नामक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, आसीदंजनमत्रेति पश्यामि तव लोचने भावी भूषण संभाराम साक्षात पूर्वे तवाकृतिम, प्रिये जिनमें अंजन लगा हुआ था इस प्रकार के तुम्हारे नेत्रों को देख रहा हूँ और आगे होने वाली आभूषणों से अलंकृत तुम्हारी आकृति को भावनावस्थाक्षात देख रहा हूँ। इस पद के पूर्वार्ध में अतीत का और उत्तरार्ध में अनागत का दर्शन है। व्याजोक्ति व्याजोक्ति छद्मनोद्भिन्न वस्तु रूपनी गुहनम, प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप को किसी बहाने से छिपाने कोष्ठक के प्रयत्न या वर्णन कोष्ठक बंद को व्याजोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, शैलेंद्र प्रतिपाद्य मान गिरिजा हस्तोप गूढ़ोल्लसत रोमांचादि संष्ठुलाखिल विधि व्यासंग भंगाकुल हा शैत्यम तुहिनाचलस्य करियो रित्युचिवान सस्मितम शैलांतः पूरमात्रि मंडल गणैर्दृष्टोवताद वह शिवः। कोष्ठक, शिव पार्वती के विवाह में कन्यादान के अवसर पर कोष्ठक बंद, हिमालय के द्वारा समर्पित की जाती हुई पार्वती के हाथ के स्पर्श से समुद्भूत रोमांच आदि के कारण सारे क्रियाकलाप के गड़बड़ा जाने से घबराए हुए हाय हिमालय के हाथ बड़े शीतल हैं कहने वाले हिमालय के अंतःपुर की स्त्रिया के मातृमंडल कोष्ठक ब्राह्मी आदि कोष्ठक बंद एवं कोष्ठक नंदी आदि कोष्ठक बंद गणों के द्वारा मुस्कुराते हुए देखे गए शिव तुम्हारी रक्षा करे। यहाँ पार्वती के हाथ के स्पर्श से उत्पन्न सात्विक भाव रूप रोमांच तथा कंप प्रकट हो गए, परंतु कोष्ठक हिमालय के हाथ स्पर्श से कोष्ठक बंद शैत्य के कारण हुए हैं इस प्रकार प्रकाशित करते हुए कोष्ठक उनकी सात्विक रूपता को कोष्ठक बंद छिपाया गया है, इसलिए यह व्याजोक्ति अलंकार है। सूक्ष्म कुतोपि लक्षितः सूक्ष्मोप्यर्थो न्यस्ये प्रकाश्यते धर्मेण केनचिद् यत्र तत् सूक्ष्मं परिचक्षते। दुर्गेय कोष्ठक सूक्ष्म कोष्ठक बंद भी अर्थ किसी भी प्रकार से जान लिया गया है, यह बात कोष्ठक अथवा जाना हुआ सूक्ष्म अर्थ भी कोष्ठक बंद जहाँ किसी कोष्ठक आकार आदि कोष्ठक बंद धर्म से दूसरे को बतलाई जाती है उसको सूक्ष्म अलंकार कहते हैं। उदाहरण, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मुहूर्त मुस्कानी, यहाँ विनय से भवानी जी सीता जी के मन का अभिप्राय समझ गयी और मुस्काकर अपना तात्पर्य भी बता दिया। संकेत से सांकेतिक अर्थ का प्रकटीकरण होने से सूक्ष्म अलंकार है। संसृष्टि चेष्टा संसृष्टि रे तेषां भेदेन यदि है स्थिति। इन कोष्ठक दो या अधिक कोष्ठक बंद अलंकारों की यहाँ कोष्ठक काव्य या वाक्य में कोष्ठक बंद भेद से कोष्ठक परस्पर निरपेक्ष रूप से कोष्ठक बंद जो स्थिति है वह संसृष्टि कोष्ठक नामक अलंकार कोष्ठक बंद मानी जाती है। शब्दालंकार की संसृष्टि वदन सौरभ लोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कल मेखला कलकलो अलकलोल दृशांत न्यया। माघ काव्य के छठे सर्ग का ऋतु वर्णन के प्रसंग का यह पद्य है। अपने मुख की सुगंधि के लोभ से कोष्ठक मुख के ऊपर कोष्ठक बंद मडराते हुए भ्रमर के आतंक से घबराकर और भी अधिक शोभा को धारण करने वाली भ्रमर भय से भागती हुई केश पास के गिरने से और भी अधिक चंचल नेत्रों वाली के भागने से सुंदर मेखला का सुंदर शब्द होने लगा। यहाँ पूर्वार्ध में मकार के तथा तृतीय चरण में लकार के अनेक बार प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार है। चतुर्थ चरण में लकलो लकलो की आवृत्ति होने से यमकालंकार है। ये दोनों शब्द अलंकार एक श्लोक में परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं, अतः यहाँ शब्दालंकारों की संसृष्टि है अर्थालंकारों की संसृष्टि। लिम्पतीव तमोंगानि वर्षनम तिवांजन भह असत पुरुषे वेव सृष्टि विफलताम गता। अंधकार अंगों का लेपन सा कर रहा है और आकाश से अंजन बरस सा रहा है। असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है। इस पद के पूर्वार्ध में तम अंधकार के व्यापन में लेपन विषयक तथा वर्षण विषयक उत्प्रेक्षा की गई है। उत्तरार्ध में असत पुरुष सेवेव में उपमा अलंकार है। इन दोनों अर्थालंकारों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति है, अतः अर्थालंकारों की संसृष्टि है। अंगा अंगी भाव संकर अविशांति जुसामात्मंग मन्यंगांगी त्वं तु संकरः। अपने स्वरूप मात्र में जिनकी विश्रांति न हो अर्थात जो परस्पर निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र अलंकार न बनते हो उनका अंगा अंगी भाव होने पर संकर अलंकार होता है। उदाहरण आते आते सीमंतरने मकरतिनी हृते हे मताट अंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटिति मणि तुला कोटि युग्मे गृहीते षोडम बिम्बोष्ठ कांत्या त्वदरी मृग दिशा मित्वरीडाम मरड़ी राजन गुंजा फलानाम स्रज इति शबरा नैव हारम हरन्ति। हे राजन, तुम्हारे डर के मारे जंगलों में भागती हुई तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियों के मरकत मणियों से युक्त शिरोभूषण को छीन लेने पर कोष्ठक अर्थात सर्वप्रथम शिरोभूषण दिखाई देने से जंगली भीलों ने जिसको उसको छीन लिया। उसके बाद कोष्ठक बंद सोने के बने ताटंक पत्र के निकाल लेने के बाद तगड़ी को तोड़ लेने पर मणियों से जटित नुपुरों को ले लेने पर भी कोष्ठक सिर से पैर तक सारे आभूषण तो भीलों ने छीन लिए किंतु उन स्त्रियों के कोष्ठक बंद बिंब फल के समान रक्त वर्ण ओष्ठ की कांति से लाल हो रहे शुभ्र मोतियों के हार को यह गुंजा फलों की माला है ऐसा समझकर भील नहीं छीनते हैं। यहाँ बिंबोष्ठ की कांति से सफेद मोतियों का हार भी लाल मालूम पड़ता है। यह तद्गुणालंकार है। इस तद्गुण के कारण मोतियों के हार में गुंजा फल की माला की भ्रांति हो जाने से भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हो गया है और उस भ्रांतिमान के कारण तद्गुण अलंकार सहृदयों के लिए और भी चमत्कार जनक हो उठा है। इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के उपकारक होने से उनका अंगा अंगी भाव संकर है। काव्य प्रकाश का अर्थालंकार निरूपण नामक दशम उल्लास समाप्त हुआ। शुभम भूयात्।